इससे पहले जब भी ब्रह्म कमल पुष्प कांपता था तो उसमें से एक नई पंखुड़ी निकलती थी। ऐसे में अब जब ब्रह्म कमल फिर से कांप रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक और पंखुड़ी निकलने वाली हो। हालांकि बुजुर्ग भृगुट के शब्दों ने सूर्यमंडल विशेषज्ञों की उम्मीदों को खत्म कर दिया था, लेकिन ब्रह्म कमल में दोबारा होने वाली इस हलचल ने उन सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वैसे भी बुजुर्ग भृगुट ने यह पहले ही कह दिया था कि पितृलोक में भी ऐसे ज्यादा योद्धा नहीं है जो ब्रह्म कमल की 9 पंखुड़ियां खोल सके। इसका सीधा मतलब था कि ऐसा करने में सक्षम होने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से पितृलोक को सोचने पर मजबूर कर देगा। जहां तक आरोहण मार्ग का प्रश्न है तो उसकी मरम्मत की जाएगी, फिर चाहे उसकी कीमत कितनी भी अधिक क्यों ना हो। इस वक्त बुजुर्ग भृगुट की अभिव्यक्ति भी बहुत गंभीर हो गई थी और उनकी नजरें कांपते हुए ब्रह्म कमल को देख रही थी। सूर्यमंडल विशेषज्ञों की तुलना में उन्हें इस ब्रह्म कमल के बारे में अधिक समझ थी और उन्हें पता था कि 9 पंखुड़ियों वाले ब्रह्म कमल का क्या अर्थ होता है। अगर 9 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल खिलता है तो इसका मतलब ये है कि उस योद्धा में युद्ध कला के शिखर पर पहुंचने की क्षमता और प्रतिभा है और भविष्य में वो अधिक से अधिक उपलब्धियां हासिल कर सकता है। पितृलोक में केवल ऐसे व्यक्ति को ही सच्चा प्रतिभाशाली योद्धा कहा जा सकता है। यहां तक कि 9 पंखुड़ियों वाले ब्रह्म कमल की तुलना में नियमों का आलिंगन भी कुछ नहीं था, इसलिए भले ही बुजुर्ग भृगुट हैरान थे कि नील इतने कम समय में राजकुमारी श्रुतिका के समय के नियमों को समझने में सक्षम था, लेकिन ये केवल उनका ध्यान आकर्षित करने के योग्य था। पर वो 9 पंखुड़ियों वाले ब्रह्म कमल की तुलना में बहुत कम चौंकाने वाली घटना थी। वहीं जब सूर्यमंडल योद्धाओं के समूह ने बुजुर्ग भृगुट के विचारों के बारे में सोचा तो वो सभी समझ गए कि 9 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल बहुत अनोखा था। यहां तक कि पितृलोक में भी ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ थे, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी। वो बस इतना चाहते थे कि एक बार 9 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल सक्रिय हो जाए तो आरोहण मार्ग निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। बस उनके लिए इतना ही काफी था। खैर, इस समय वो ब्रह्म कमल धीरे धीरे हिल रहा था और नील की नजरें उसी पर टिकी थी। ईमानदारी से कहें तो उसे स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि ब्रह्म कमल की सभी पंखुड़ियां खुल जाएंगी, लेकिन नागराज पद्मनाभ ने उससे कहा था कि यह तय करना उसके हाथ में नहीं है कि वो कितनी पंखुड़ियां खोल सकता है। पंखुड़ियों की संख्या से तय होता था कि कोई व्यक्ति पितृलोक में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये एक योद्धा के भाग्य का पूर्वानुमान था। हालांकि नील को पितृलोक, महामंडलेश्वरों और प्रजापतियों की ताकत के बारे में स्पष्ट समझ नहीं थी, लेकिन वो विदर्भ साम्राज्य में मिले उस रहस्यमय व्यक्ति की ताकत को समझता था। उस व्यक्ति की ताकत शायद प्रजापतियों से भी अधिक थी। वो नीलिमा से थोड़े समय के लिए ही मिल पाया था, इसके बाद वो युवक उसे अपने साथ ले गया था। ऐसे में अगर वो नीलिमा को फिर से देखना चाहता है तो वो कल्पना कर सकता है कि उसे कितनी ऊंचाई तक पहुंचना होगा। भले ही वो 9 पंखुड़ियों वाले ब्रह्म कमल को सक्रिय कर दे, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी इच्छित ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। वहीं नील की निगाहों के सामने मौजूद ब्रह्म कमल लगातार कांप रहा था। कुछ पलों के इंतजार के बाद आखिरकार ब्रह्म कमल ने आखिरी 2 पंखुड़ियों में से एक को मुक्त कर दिया। तभी एक सूर्यमंडल योद्धा ने उत्साह में उछलते हुए कहा,
वो खिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा हजारों सालों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है।
इस पर एक अन्य शीर्ष योद्धा ने भी खुशी से झूमते हुए कहा,
अब हमें किसी गुप्त तरीके की तलाश करने की जरूरत नहीं है, अब हम पितृलोक में बिना किसी बाधा के जा सकते हैं।
इस समय कई सूर्यमंडल विशेषज्ञों की आंखें खुशी के आंसुओं से भरी हुई थी। आखिरकार सूर्यमंडल में प्रवेश करने और पितृलोक में जाने के लिए उन विशेषज्ञों ने हजारों वर्षों तक हर संभव तरीका अपनाया था। अवसरों की तलाश में कई सूर्यमंडल योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी थी, फिर भी उन्हें कोई कारगर तरीका नहीं मिला था। लेकिन किसने सोचा होगा कि वो एक दिन अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को पूरा कर पाएंगे। ब्रह्म कमल पुष्प के लगातार हिलने के कारण आखिरकार 8वीं पंखुड़ी पूरी तरह से खिल गई। 8वीं पंखुड़ी के खिलने के कुछ समय बाद 9वीं पंखुड़ी भी भीड़ की निगाहों के सामने पूरी तरह खिल गई। इस समय एक पूर्ण ब्रह्म कमल धीरे धीरे हवा में घूम रहा था। ये देखकर नील के होंठों पर मुस्कान आ गई। हालांकि इस बार शुक्रमंडल में पहुंचने की कठिनाई कम नहीं थी और प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल थी, लेकिन परिणाम बहुत अच्छा था। बाकी सबको भी समझ आ गया कि सब कुछ ठीक हो गया है। इस वजह से उन्होंने राहत की सांस ली और उनके दिल में खुशी की भावना भर गई। लेकिन जब सभी को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी अचानक ब्रह्म कमल अप्रत्याशित रूप से एक बार फिर से कांप उठा। ये देखकर नील की भौहें थोड़ी सी फड़क उठी। उसने ब्रह्म कमल पुष्प को घूरा और उसके चेहरे पर एक हैरानी भरा भाव उभर आया। 9 पंखुड़ियां पहले ही खिल चुकी थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि ब्रह्म कमल फिर से कांप क्यों रहा है। तभी एक सूर्यमंडल विशेषज्ञ ने थोड़ी चिंता भरी अभिव्यक्ति के साथ पूछा,
पर्यवेक्षक, ये आखिर क्या हो रहा है?
लेकिन खुद बुजुर्ग भिकूट का चेहरा भी आश्चर्य से भरा हुआ था। तार्किक रूप से कहें तो जब 9 पंखुड़ियां खिलती हैं तो ब्रह्म कमल को उसी अवस्था में रहना चाहिए, लेकिन वो अब भी कांप रहा था, जैसे कि कोई शक्ति ब्रह्म कमल से मुक्त होने की कोशिश कर रही हो।
आखिर हो क्या रहा है?
एक पल के लिए बुजुर्ग भ्रिकुट को भी समझ में नहीं आया और उनके चेहरे पर भी हैरान करने वाले भाव थे। लेकिन जब सुचिता देवी ने ब्रह्म कमल पुष्प को देखा तो उसने धीरे से अपने होठों को काट लिया और उन गुप्त अभिलेखों को याद करने लगी। गुप्त समुदाय का इतिहास बहुत लंबा था। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त समुदाय की विरासत पिछले युग से जुड़ी हुई है। दूसरे शब्दों में गुप्त समुदाय इस युग के प्राणियों के जन्म से भी पहले अस्तित्व में आ चुका था, इसलिए उनकी कुछ विरासतें प्राचीन काल से चली आ रही थी। हालांकि सुचिता देवी बुजुर्ग भ्रिकुट जितनी जानकार नहीं थी, फिर भी गुप्त समुदाय की एक संत के रूप में वो कुछ ऐसे अभिलेखों के संपर्क में आ सकती थी जिन तक खुद बुजुर्ग भ्रिकुट भी नहीं पहुंच सकते थे। वास्तव में ब्रह्म कमल पुष्प को 9 पंखुड़ियों में बांटा गया था और ये 9 पंखुड़ियां ब्रह्म कमल के 9 खजानों का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन ये केवल पहली परत थी जिसे लघु ब्रह्म कमल कहा जाता था। अब अगर कोई इस अवरोध को तोड़ सकता है तो वो वृहद ब्रह्म कमल के क्षेत्र में प्रवेश करेगा और तब वो 27 हृदय स्त्रोतों को खोलेगा, जिसे ब्रह्म कमल की दूसरी परत माना जाता है। ये सोचते ही सुचिता देवी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अचानक कहा, पर्यवेक्षक, क्या नील ब्रह्म कमल की दूसरी परत को खोलने वाला है? क्या ये वृहद ब्रह्म कमल है? वो खुद भी निश्चित नहीं थी, इसलिए उसकी आवाज में आशंका और आश्चर्य दोनों थे। बुजुर्ग भ्रिकुट पहले तो चौंके, पर वो वृहद ब्रह्म कमल के अर्थ को अच्छी तरह से जानते थे। बस उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके सामने खड़ा ये बालक सचमुच उस दूसरी परत को छू भी सकता है, क्योंकि उनके अनुसार ये लगभग असंभव था। ब्रह्म कमल पुष्प 2 स्तरों में विभाजित था, लघु ब्रह्म कमल और वृहद ब्रह्म कमल। लघु ब्रह्म कमल में अधिकतम 9 पंखुड़ियां थी, जबकि वृहद ब्रह्म कमल में 27 पंखुड़ियां खिल सकती थी। लघु ब्रह्म कमल को सक्रिय करना भी दुर्लभ था और पहली बार में सभी 9 पंखुड़ियां खिलाना तो करोड़ों में किसी एक योद्धा की उपलब्धि हो सकती थी। लेकिन ठीक उसी क्षण लघु ब्रह्म कमल को पूरा खिलाते हुए वृहद ब्रह्म कमल को भी सक्रिय करना, ये तो लगभग असंभव माना जाता था। यहां तक कि प्रजापतियों जैसे महान अस्तित्व भी इसे आसानी से नहीं कर पाते थे, इसलिए बुजुर्ग भ्रिकुट का हैरान होना बिल्कुल स्वाभाविक था। अब उनकी आंखों में गहरी गंभीरता उतर आई। वो लंबे समय तक ब्रह्म कमल को देखते रहे, हर क्षण उनकी सांसें भारी होती गई। आखिरकार उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी।
अविश्वसनीय,
वो समझ गए थे कि नील के बारे में वो जितना जानते थे ये घटना उससे कहीं आगे की थी, और अगर ये समाचार पत्र लोक तक पहुंचा तो वहां पर भी हड़कंप मचना तय था। हजारों साल पहले पितृलोक की मानव जाति ने उन्हें पैतृक दिव्यनाग अंडे को प्राप्त करने में दैवीय साम्राज्यों की मदद करने के लिए भेजा था। बुजुर्ग भ्रिकुट को अपने भाग्य के बारे में पता था। उन्हें डर था कि केवल पैतृक दिव्यनाग अंडे को प्राप्त करके ही वो पितृलोक में वापस लौट पाएंगे, लेकिन अगर वो किसी ऐसे योद्धा को खोज निकाले जिसने वृहद ब्रह्म कमल को सक्रिय किया हो तो शायद उनका भाग्य बदल जाएगा, साथ ही उन्हें अकल्पनीय लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तभी 9 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल हवा में और भी तेजी से कांपने लगा और उसके घूमने की गति भी तेज होती गई। वहीं दूसरी तरफ नील को कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने मन ही मन नागराज पद्मनाभ से पूछा,
नागराज पद्मनाभ, क्या 9 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल खिलना बंद नहीं हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो फिर से अंकुरित हो जाए और दूसरा फूल उगने लगे?
तभी अचानक नागराज पद्मनाभ की हंसी नील के दिमाग में गूंज उठी।
तुम्हारा विचार बहुत अजीब है, कोई दूसरा फूल कैसे उग सकता है? ऐसा लगता है कि तुम ब्रह्म कमल की दूसरी परत खोलने वाले हो। तुम्हारा भाग्य इस युग के महायुद्ध से जुड़ा है, इसलिए ये वास्तव में संभव है। चलो हम थोड़ा इंतजार करके देखते हैं।
तभी नील ने एक और सवाल किया, आखिर ये ब्रह्म कमल की दूसरी परत है क्या? नील अभी भी हैरान था। उसका सवाल सुनकर नागराज पद्मनाभ ने उदासीनता से समझाया,
ये लघु ब्रह्म कमल और बृहद ब्रह्म कमल के बीच का अंतर है, थोड़ी देर में तुम खुद ही समझ जाओगे।
जैसे ही नागराज पद्मनाभ की बात समाप्त हुई, तभी नौ पंखुड़ियों वाले ब्रह्म कमल के बीच से एक पराग कोश धीरे धीरे ऊपर उठा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पराग कोश के बीच में एक छोटी सी फूल की कली थी। पेड़ की चौकस निगाहों के सामने वो पराग कोश और ऊपर उठता गया और फूल की छोटी सी कली स्पष्ट गति से फैलती रही। कुछ ही देर में फूल की कली नौ पंखुड़ियों वाले ब्रह्म कमल से ऊपर खिल गई और पंखुड़ियों की परतें उसके चारों ओर कसकर लिपट गई। तभी नील ने हंसते हुए कहा,
वास्तव में ये एक दूसरा ब्रह्म कमल है, मैं सही था।
इस पर नागराज पद्मनाभ ने उसे टोकते हुए कहा,
तुम सही कैसे हो सकते हो, ये नौ पंखुड़ियों वाले ब्रह्म कमल से अलग है।
जब वो कली धीरे धीरे ऊपर आई तो उसके ऊपर की पंखुड़ियां एक एक करके खुलने लगी।
एक, दो, तीन, चार।
युवराज शाश्वत उन पंखुड़ियों को लगातार गिनता रहा। कुछ ही देर बाद नौ पंखुड़ियों वाले बड़े ब्रह्म कमल की दूसरी परत में कुल 26 पंखुड़ियां खिल गई। केवल एक ही पंखुड़ी नहीं खिली थी, जिस वजह से लोगों को लगा कि वो थोड़ा अधूरा है। किंतु चाहे अधूरा ही क्यों ना हो, आखिरकार ब्रह्म कमल पुष्प की दो परतें खिल गई थी, जो सबकी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा थी। अगले ही पल ब्रह्म कमल पुष्प की दो परतें सभी के सामने धीरे धीरे तैरते हुए एक मीठी सुगंध बिखेरती रही। उन पंखुड़ियों से चमकदार धाराएं निकल रही थी। उस दृश्य को देखकर सुचिता देवी ने आह भरी,
ये व्यक्ति।
लेकिन तभी बुजुर्ग भ्रिकुट बीच में ही बोल पड़े,
ऐसा लगता है कि उसके पास इस युग के महायुद्ध की नियति है। हालांकि मैं नहीं जानता कि वो उस युद्ध का पूर्ण नायक हो सकता है या नहीं, लेकिन वो कम से कम एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभा सकता है।
युग के महायुद्ध की नियति,
ये सुनकर वहां मौजूद सूर्यमंडल योद्धाओं के मुंह खुले के खुले रह गए। तो क्या होगा आगे? क्या नील की नियति जानने के बाद सभी लोगों का नील को देखने का नजरिया बदल जाएगा, या फिर उसकी नियति के कारण सभी सूर्यमंडल योद्धा उसके दुश्मन बन जाएंगे? क्या सचमुच पितृलोक का रास्ता खुलने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट FM।